Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharvavediya Brahman Bhakke Prashnopanishad ki charcha hum log pravachan satra mein kar rahe hain. Prashnopanishad ke छह प्रकरणों में से तृतीय प्रकरण का विचार हो रहा है। तृतीय प्रकरण में ऋषि जो कौशल्य हैं वे पूछते हैं आचार्य पिप्पलाद जी से, प्राण की उत्पत्ति किससे होती है, उत्पन्न हुआ प्राण इस शरीर में किस कारण आता है और इस शरीर में आया हुआ प्राण अपने आप को विभक्त करके कैसे इस शरीर में स्थित होता है और उत्क्रमण किससे करता है इस शरीर से, बाह्य अधिदैव तथा अधिभूत जगत को कैसे धारण करके रखता है एवं अध्यात्म को कैसे विधारित करता है, ये सब प्रश्न हैं कौशल्य ऋषि के आचार्य पिप्पलाद जी के प्रति। क्रम से इन प्रश्नों का उत्तर आचार्य पिप्पलाद जी दे रहे हैं। प्राण की उत्पत्ति परमात्मा से होती है करके बता दिया और प्रारब्ध कर्मवशात इस शरीर में उसका प्रवेश होता है ये बताया गया। मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, इस वाक्य से उत्तर दिया। अपने आप को विभक्त करके इस शरीर में कैसे अवस्थित रहता है इसका उत्तर दिया जा रहा है। तो इसका भी उत्तर देते हुए कहा कि जो प्राण का एक वृत्ति विशेष है अपान, वह उसे पायु उपस्थ में स्थापित करता है और स्वयं चक्षु तथा श्रोत्र में अवस्थित रहता है। प्राण नाम की वृत्ति नाभि में समान नाम की अपने वृत्ति को स्थापित करता है और 72,72,10,201 जो इस शरीर में नाड़ियां हैं उनमें व्यान वृत्ति को स्थापित करता है और हृदय संबंधी मुख्य 101 नाड़ियों में से जो प्रधान नाड़ी है उदान नाम की, उसमें स्थित होता है प्राण का एक उदान नाम का जो भेद है वह। और जीवित अवस्था में वो आराम से सुषुम्ना नाड़ी में रहता है। जब जीवन का हेतुभूत प्रारब्ध कर्म समाप्त होता है तब यह उदान ही केन उत्क्रमते, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा जा रहा है कि प्राण को, प्राण के स्वामी जीवात्मा को और जीवात्मा के भोगोपकरण चक्षुरादि समस्त इंद्रियों को तथा भावी शरीर के उपादान कारण भूत सूक्ष्मों को ले जाता है इस शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में। वो कौन ले जाता है तो प्राण का ही एक वृत्ति विशेष जो उदान है उससे इस शरीर से वह उत्क्रमण करता है, निर्गमन करता है, शरीरांतर में जाता है। उस समय इस उदान वायु का व्यापार होता है, इतना ही उसका व्यापार है इस शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में ले जा करके स्थापित करना उदान का व्यापार है। और ये इस शरीर से निकाल करके कौन से शरीर में ले जाएगा जीव को, तो उसके लिए कहा कि पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्य लोकम, कि यह उदान वायु इस शरीर से उत्क्रमण करा रहा है जिस जीव का, उस जीव को पुण्यलोक शब्दित मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि में भी ले जाता है और पापलोक शब्दित मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि में भी ले जाता है और मनुष्यलोक शब्दित मनुष्य शरीर से निकाल करके फिर दूसरे मानव शरीर में भी ले जाता है। तो ये उत्तम योनि अधम योनि तथा मध्यम योनि की प्राप्ति इस शरीर से निकलवा करके जीवात्मा को कराता है उदान वायु। ये उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीर की प्राप्ति करा रहा है, इसमें प्रयोजक है पुण्येन पापेन और उभाभ्याम शब्द से बताए गए जो कर्म है। यदि इस शरीर को छोड़ते समय भावी शरीर के प्रारब्ध के रूप में पुण्य कर्म ही निश्चित हो गए तो पुण्य कर्मों के वशीभूत होकर के उदान उत्कृष्ट योनि में इस शरीर से उत्क्रमण करने वाले जीवात्मा को ले जाएगा। और इस शरीर को छोड़ते समय भावी शरीर के प्रारब्ध के रूप में यदि पुण्य की अपेक्षा पाप कर्म ही अधिक फलोन्मुख हो गए, प्रारब्ध बन करके निश्चित हुए, तो पाप योनि में ले जाएगा और पुण्य पाप उभय यदि प्रारब्ध बन करके फल देने के लिए सामने आए तो मनुष्य लोक में यानी मनुष्य शरीर में ले जाएगा। तो ये अलग अलग योनि की प्राप्ति भविष्य में कराने वाला मुख्य कारक हुआ कर्म। जैसे इस शरीर में प्राण का प्रवेश किससे हुआ तो कहा मनोकृति न आयाति, मनोकृत है कर्म। ऐसे भावी शरीर में भी वो प्रविष्ट होगा तो कर्म से ही होगा, वो मनोकृत कर्म हुआ पुण्य प्रधान या पाप प्रधान या पुण्य पाप समान, ऐसे अवांतर तीन भेद हुए। मनोकृत शब्दित प्रारब्ध कर्म के भावी प्रारब्ध के वो जैसा होगा ऐसा शरीर यह उदान वायु जीवात्मा को प्राप्त कराता है, इसे बताया गया सप्तम कंडिका में। तो केन उत्क्रमते इस प्रश्न का भी उत्तर हुआ। अब जो पंचम प्रश्न है कथम बाह्यम अभिधत्ते ये, और छठवा प्रश्न है कथम अध्यात्मम इति, इन दो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये कंडिका आ रही है अष्टम। आदित्यो हवै बाह्य प्राण उदयतेस हेनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णान, पृथिव्याम या देवता सैसा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य आभ्यंतरा यद आकाश स समानो वायुर्व्यान। इससे बताया जा रहा है कि ये जो आदित्य हैं, आदित्य के भी दो स्वरूप, एक अधिभूत स्वरूप एक अधिदैव स्वरूप, जिसका हम आंख से दर्शन करते हैं वह आधिभौतिक स्वरूप है, भौतिक तेजात्मक आदित्य का। और इस आदित्य मंडल में एक आदित्य नाम की देवता है जो चक्षु की अनुग्राहक है। चक्षु की अनुग्राहक देवता मानी जाती है आदित्य को। हाँ, आदित्य सूर्य है। सूर्य के दो स्वरूप हैं, एक जो हम आंख से देख रहे हैं उदय अस्त होता हुआ दिन में रूप, ये है आदित्य का भौतिक रूप, भौतिक तेजात्मक तेज पुंजात्मक स्वरूप। और इसके अंदर एक अधिदैव स्वरूप है, देवता स्वरूप, वो आदित्य देवता है। और उस आदित्य देवता का भी एक अंतर्यामी है, वो परमात्मा है। जैसे शरीर के अंदर भी दो है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद स्वजातीय मंत्र बताता है कि एक जीव और ईश्वर दोनों हृदय में रहते हैं, एक शरीर रूपी वृक्ष पर लगे हुए सुख दुखात्मक फलों का भोक्ता है। तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, और एक बिना खाए खाली देखता रहता है साक्षी बन करके। अनष्टनन्यो अभिचाकसीति, जो अनशन करते हुए खाली देखता ही रहता है, कुछ भी खाता नहीं, वो है परमेश्वर, उसे अंतर्यामी कहा जाता है। और वो अंतर्यामी केवल हमारा ही नहीं है, सबका है। इसलिए एक बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण आता है, उसमें बताया गया यह आदित्य तिष्ठन आदित्यम अंतरो यमयति, वो आदित्य के भी अंदर है। जैसे आपके अंदर रह करके आपका नियमन करता है, आपका नियमन करता है, आपके संस्कार के अनुसार आपको बैठने नहीं देता, किसी न किसी कार्य में हमेशा लगाए रखता है। ये नियमन करना है, न चाहते हुए भी वो आपके जैसे संस्कार है, स्वभाव है, उसके अनुसार वो कराता रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वं तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया, वो घुमा रहा है का मतलब नियमन कर रहा है, वो कुछ न कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति आपसे कराता रहता है। ऐसे आदित्य भी प्रतिदिन जिस समय आदित्य का उदय होना है, पंचांग में लिखा है, एक क्षण पहले नहीं, एक क्षण बाद में नहीं, न तो बिफोर गाड़ी चलती है आदित्य का रथ, न तो लेट होता है। और ये हजारों साल पहले का जो पंचांग है, सौ साल पहले का जो पंचांग मिलता है, तो सौ साल पहले के पंचांग में लिखा था कि आज के दिन इतने बज करके इतने मिनट इतने सेकंड पर सूर्योदय होगा, तो उतने ही बजे वो होगा, एक सेकंड पहले नहीं होगा, एक सेकंड बाद में नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? सूर्य का रथ कभी लेट क्यों नहीं चलता, या कभी तीव्र गति से क्यों नहीं चलता? तो उसका भी एक नियामक है, आदित्य का भी अंतर्यामी। तो आदित्य का ये जो सूर्यमंडलात्मक स्वरूप देख रहे हैं, ये भौतिक स्वरूप हुआ, और इसके अंदर फिर है एक अभिमानी देवता, और उसका भी नियामक है एक अंतर्यामी परमेश्वर। और उस परमेश्वर के नियमन में रह करके सूर्य नियम से अपना उदय अस्तादि कार्य करता रहता है। तो वो जो एक आदित्य का स्वरूप है, आदिदैवात्मक स्वरूप, उसे भी आदित्य ही कहा जाता है। तो यहां कहा जा रहा है कि एषः प्राणः, ये जो प्राण है, जिस प्राण ने अध्यात्म इस शरीर में अपने आप को पांच विभागों में विभक्त किया था, ऐसे अधिदैव में भी इन अध्यात्म अपनी पांच वृत्ति के अनुग्राहक के रूप में अपने आप को ही विभक्त करके अवस्थित होता है। अनुग्राह्य भी आदित्य, क्या नाम, प्राण ही है, अनुग्राहक भी प्राण ही है। जो अध्यात्म रूप है प्राण का, वह अनुग्राह्य रूप है, और अधिदैव रूप है वह अनुग्राहक रूप है। तो अनुग्राह्य रूप पहले बता दिया, इस शरीर के अंदर प्राण की जो पांच वृत्तियां हैं अलग अलग, वह इस शरीर के अंदर कहां कहां रहती हैं, उनका स्थान बता दिया है अध्यात्म में। वे समझना उन उन स्थानों में रहने वाली प्राण की अध्यात्म वृत्ति, वो है अनुग्राह्य स्वरूप। और उन अध्यात्म प्राण के अनुग्राहक स्वरूप को बताने के लिए ये कंडिका प्रारंभ हो रही है। इसमें बताया गया पहला आदित्य का स्वरूप, जो अध्यात्म में प्राण नाम की एक वृत्ति है, जिसका स्थान चक्षु श्रोत्र को बताया गया था। तो चक्षु श्रोत्र में रहने वाली जो अध्यात्म वृत्ति है मुख्य प्राण की, उसका अनुग्राहक स्वरूप है अधिदैव में आदित्य प्राण का। हाँ, अध्यात्म प्राण का अनुग्राहक अधिदैव में कौन है? आदित्य। उसे बताया जा रहा है कि एषः प्राण, हवे, ये दो निपात है प्रसिद्ध अर्थ में। ये जो प्रसिद्ध आदित्य है, यह आदित्य ही अधिदैव में यह प्राण है, का मतलब प्राण ने आदित्य का रूप धारण करके अधिदैव में स्थित है। ये प्राण ही आदित्य रूप से, और वो क्या करता है? कहते हैं एषः उदयति, ये उदित होता है। किसलिए उदयास्त होता है? तो कहते हैं येनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णानः। तो चाक्षुषम शब्द का अर्थ होता है चक्षुषी भवः, चाक्षुषः, तम चाक्षुषम। तो अध्यात्म में चक्षुरूपी स्थान में रहने वाला, चक्षु गोलक में रहने वाला, और चक्षु ये उपलक्षण है श्रोत्र का भी, क्योंकि उसके दो स्थान बताए ना, चक्षु श्रोत्र। तो इसलिए चाक्षुष के साथ साथ श्रावण भी समझना। तो श्रोत्र यानी कर्ण संस्कुली तथा ये चर्म चक्षु, इन दोनों स्थानों में रहने वाला जो मुख्य प्राण, उस प्राण पर अनुग्रह करता हुआ, इसलिए येनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णानः। इसमें येनम शब्द से लेना अध्यात्म में पांच विभागों में विभक्त प्राण की जो प्राण नाम की वृत्ति है, उसे एनम शब्द से लेना अध्यात्म। और प्राण कहने से तो पांचों आ जाते, लेकिन चाक्षुषम ये विशेषण है, इसलिए वो हुआ मुख्य प्राण, चक्षु श्रोत्र में रहने वाला प्राण। और इस चक्षु श्रोत्र में रहने वाले प्राण पर अनुग्रह करता हुआ, अनुगृह्णानः, शब्द का अर्थ है अनुग्रह करता हुआ, उपकार करता हुआ। इसीलिए ये अध्यात्म प्राण सूर्य से अनुग्रहित होकर के फिर चक्षु को अनुग्रहित करता है और चक्षु फिर रूप का ग्रहण कर पाता है, अन्यथा नहीं। यदि आदित्य का अनुग्रह प्राप्त न हो तो चक्षु श्रोत्रस्थ प्राण वृत्ति का जो परिस्पंदन रूप व्यापार है वो नहीं हो पाएगा, और परिस्पंदन यदि प्राण का नहीं होगा तो चक्षु इंद्रिय बिना परिस्पंदन के अपने विषय रूप तक नहीं जा पाएगा। चक्षु इंद्रिय को अपने विषय रूप का ग्रहण करने के लिए रूप तक जाना पड़ता है, और जाने के लिए तो ज्ञानेन्द्रिय है ना, ये तो केवल अपने विषय का प्रकाश मात्र कर पाएगा, लेकिन वहां तक जाना रूप जो क्रिया हो रही है उसको ले जाएगा प्राण का परिस्पंदन रूप जो व्यापार है वो क्रिया है। क्रिया शक्तिमान तो प्राण है और चक्षु इंद्रिय तो ज्ञान शक्ति वाला है, तो वह केवल अपने विषयों के ज्ञान इंद्रिय प्रकाशक होते हैं और विषयों तक पहुंचाना रूप जो क्रिया होती है वह प्राण के अलग अलग वृत्तियों की होती है। तो चक्षु को और श्रोत्र को अपने विषय तक पहुंचाने में सहायक बन जाता है प्राण, और ये प्राण भी आदित्य से अनुग्रहित होकर के बन सकता है। अध्यात्म प्राण को अधिदैव रूप जो प्राण का है आदित्य, उसका अनुग्रह प्राप्त न हो तो नहीं कर पाता परिस्पंदन रूप व्यापार, और परिस्पंदन रूप व्यापार नहीं कर पाएगा तो श्रोत्र को और चक्षु इंद्रिय को, नेत्र इंद्रिय को नहीं ले जा पाएगा अपने अपने विषय तक। इसलिए यहां कहा कि येनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णानः येषः प्राण उदयति। तो चक्षु में स्थित प्राण वृत्ति पर अनुग्रह करने के लिए आदित्य का प्रतिदिन उदय होता है और फिर अस्त होता है, फिर उदय होता है, अस्त होता है, ये क्रियाएं हो रही है। का मतलब मुख्य प्राण ही आध्यात्मगत चाक्षुष प्राण पर अनुग्रह करने के लिए अधिदैव में आदित्य बनकर के अवस्थित है, ये कहा गया। अब ये जो अपान वृत्ति है एक प्राण की, उस अपान वृत्ति की अनुग्राहक जो देवता है अधिदैव में उसे बताया जा रहा है, वो भी प्राण का ही रूप है। तो पृथिव्याम या देवता, ये जो पृथ्वी है इसकी अभिमानी जो देवता है, पृथ्वी की अभिमानी देवता माना जाता है अग्नि को। ये तीन लोग हैं ना अलग अलग, पृथ्वी भूर भूव स्व, तो भूलोक की अधिष्ठात्री देवता माना गया है अग्नि को, और भूव यानी अंतरिक्ष लोक उसकी अधिष्ठात्री देवता है वायु, और स्व शब्दित जो स्वर्गलोक है उसकी अधिष्ठात्री देवता माना जाता है आदित्य को। इसलिए यहां पर पृथ्वी को लिया गया। तो पृथिव्याम या देवता यानी पृथ्वी की अधिष्ठात्री जो देवता है अग्नि देवता है।